राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में इस्कान भुज के श्री जगन्नाथ मंदिर में। अभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के चौथे अध्याय में व्यास देव का कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए चिंतन और उनके गुरुदेव नारद जी का प्रकट्य प्रेरणा के लिए भागवत के आविर्भाव के लिए ये चौथे पांचवें और छठे अध्याय में वर्णन है। कल हमने पढ़ा था कि व्यासदेव मुक्त आत्मा है, भगवान का अवतार है, असल में महात्मा है, आत्मा नहीं सामान्य। भगवान के अवतारों की श्रेणी में आते हैं, वेद को विस्तार करने के लिए आए थे। और जो ऐसे प्रकृति के गुणों से परे ब्रह्म भूत स्तर के ऊपर होते हैं, उनको भूत भविष्य और वर्तमान का दर्शन करने की दिव्य दृष्टि होती है। तो व्यास देव ने कलयुग के अंदर बहुत दोष देखे। आज दोष श्लोक 17 और 18 में वो दोष कौन से देखे उनका वर्णन है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं, 17 और 18 श्लोक। भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशरधानानां नहसत्वाम् दुर्मेधान हरिषतासि आयुष दुर्भागांश्च जनान वीक्षये मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्राणां यत् दधयो हितममोग दृका। भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशर्दधानान् निःसत्त्वाम् दुर्मेधां हर्षितायुषः दुर्भागानं च जनान् वीक्षये मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्राणां यत् दध्यौ हितममोग दृक्। भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशर्दधानान् निःसत्त्वाम् दुर्मेधां हरिष्टायुष दुर्भागां च जनान् वीक्षये मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्राणां यत् दधयो हितममोगद्रे। पाठ कर सकते हैं तो कीजिए। भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशर्दधानां निःसत्त्वाम् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भागांश्च जनान् वीक्षये मुनिर्देव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यो हितम् अमोघद्रे भौतिकानां च भावानां अशर्दधानां निःसत्त्वां दुर्मेधां हर्षितायुषः दुर्भागांश जनान वीक्षये मुनिर्देव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्योहितममोघद्रे। इस श्लोक पढ़ने का अभ्यास करना हो ना तो नीचे जो शब्द अर्थ ना शब्दों को संधि किया हुआ है तो नीचे से पढ़ेंगे ना तो दो शब्द अलग समझ में आएंगे। नीचे से देखने से पढ़ना आसान है, सीधा पढ़ने में हमें छंदी विच्छेद नहीं करना आता है संस्कृत का, तो दृष्टि से देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। शब्द अर्थ में देखेंगे तो दो शब्द अलग अलग कैसे एक नज़र देख लेंगे तो पढ़ना आसान होगा। पढ़िए भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशर्दधानां निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भागांश जनान् वीक्षये मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां या दद्यो हितं ममोघद्रे। बहुत अच्छा पढ़ा ना। भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशर्दधानां निःसत्त्वां दुर्मेधां हर्षितायुषः दुर्भागांश जनान् वीक्षये मुनिर्देव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यो हितममोघद्रः। सो इस श्लोक में मुनि जनानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्य चक्षुषा। जनानां कलयुग के लोगों का वीक्ष्य देखा, कलयुग के लोगों के हालत को देखा। किसने देखा? व्यास मुनि ने देखा। कैसे देखा? दिव्य चक्षुषा, उसके पास दिव्य दृष्टि थी जिससे देखा। सामने नहीं दिख रहा था लेकिन दिव्य दृष्टि से कलयुग के लोगों के अवगुणों को देखा, बुरी हालत को देखा। तो जब उन्होंने देखा तो क्या देखा? वो देखने के बाद उन्होंने क्या किया? दो बातें हैं। तो ये बीच की लाइन पहले समझनी चाहिए कि व्यास मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के लोगों के ताप संताप दुर्भाग को देखा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सर्ववर्ण आश्रम नाम यत, जो सर्ववर्ण आश्रम व्यवस्था है, उसके दधो ध्यान किया। हितम, किस चीज के लिए ध्यान किया? उनके हित करने के लिए ध्यान किया कि इनका हित कैसे किया जाए। और यह हित कर सकता था क्या? सोच तो कोई भी सकता है कि मैं हित कर लूं, लेकिन करने की उसमें शक्ति है क्या? बोला ये अमोघ दृक् थे, इनकी दृष्टि जो थी, उनका जो ज्ञान था। प्रभुपाद ने लिखा अमोघ, जैसे रामबाण को बोलते अमोघ है, ये दवाई अमोघ है। तो उनके पास अमोघ दृष्टि थी, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। इसका मतलब वो ऐसा डॉक्टर था जिसको हर बीमारी का इलाज आता था। अमोघ दृक् का मतलब सब रोगों का निदान करने में सामर्थ्य, वो सर्व ज्ञान संपन्न। तो उसको वो सर्व ज्ञान संपन्न था और उन्होंने सर्व वर्ण आश्रम के लोगों के हित का विचार किया। तो प्रभुपाद का तात्पर्य असल में हित के ऊपर है कि चाहे व्यासदेव हो चाहे भविष्य में आने वाले नाम लिखे हैं, जैसे चाहे मध्वाचार्य हो चाहे चेतना महाप्रभु हो चाहे रूप गोस्वामी हो चाहे सदा सदा भक्ति सिद्धांत सरस्वती हो, सद सिद्धांत तक नाम लिखे हैं कि ये सब नाम अलग हैं लेकिन काम सबका एक है। वो काम एक क्या है कि दुखी लोगों का हित करना इनका विशेष विचार है। और ये लोग सामान्य, प्रभुपाद फिर तात्पर्य में कहते हैं, एक तो होते हैं राजनेता, वो कहते हैं हम देश का हित करेंगे जनता का हित करेंगे, लेकिन उनको 5 मिनट बाद में क्या होने वाला इसका तो पता है नहीं, तो क्या हित करेंगे। ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनके नाम लिए हैं, ये तो राजनेता जैसे है नहीं, ये असल में हित कर सकते क्योंकि इनको भविष्य का पता लगता है और लोगों को क्या दुख आने वाला है उसके निवारण का क्या साधन है इनको पता है। तो मुख्य तात्पर्य इन चीजों के ऊपर है। किस चीज के ऊपर? कि जो साधु हैं जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, यहां दिव्य चक्षु सा, ये असल में दिव्य चक्षु भी केवल भौतिक चीजों को देखने के लिए है, प्रेम के चक्षु और होते हैं जिसको भगवान से देखा जाता है। देखिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु दिए, लेकिन दिव्य चक्षु अर्जुन की अपनी दृष्टि से बड़े नहीं है। अर्जुन की अपनी दृष्टि में तो वो कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है, उनसे उनका संबंध है, मित्रता, लेकिन दिव्य चक्षु के बाद तो अर्जुन भयभीत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो वो दिव्य दृष्टि आश्चर्य देखने के लिए है भौतिक जगत का। तो यहां एक देश बात समझनी चाहिए कि दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को दी थी वो दृष्टि इतनी महान नहीं है जितनी अर्जुन की भक्त के और मित्र के रूप में कृष्ण के प्रति उनकी जो दृष्टि थी वो इससे ऊपर थी। तो यहां ये दिव्य दृष्टि उनकी जो है वो भौतिक जगत के अंदर कलयुग के प्रभाव को देखने की दृष्टि है। भगवान को देखने की दृष्टि प्रेम की दृष्टि होती है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है, क्योंकि विराट रूप भी भगवान का भौतिक है, भौतिक जगत में भौतिक है, उसका आध्यात्मिक जगत में कोई विराट रूप का लोक नहीं है। तो दिव्य चक्षु से उन्होंने देखा, ये बात आया है, देखिए दिव्य चक्षु उधर भी है, ददामि दिव्य चक्षु, भगवान अर्जुन को कह रहे थे मैं दिव्य चक्षु देता हूं, क्या देखने के लिए? मेरा विश्व रूप देखने के लिए, मेरी विभूतियों भौतिक जगत में विभूतियां देखने के लिए। तो वो श्री कृष्ण और विश्व रूप दोनों में से महान कौन है? श्री कृष्ण के विश्व रूप, श्री कृष्ण जिसने विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप दिखाने वाला उससे महान है ना, और विश्व रूप दिखाने के बाद श्री कृष्ण ने ही विष्णु रूप दिखाया, तो विष्णु रूप भी कृष्ण से ही निकला ना, तो दोनों को दिखाने वाला कृष्ण है ना, तो कृष्ण महान हुआ ना। तो जो कृष्ण को अपना मित्र मानता है, या कृष्ण जिसको कहते हैं तुम मेरा मित्र हो, और जिसका सारथी बनता है, और जो कृष्ण को मान सकता है, तो उसकी दृष्टि अच्छी है कि भौतिक विराट रूप को देखने वाली दृष्टि अच्छी है? तो ये दोनों का, वैसे सामान्य जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं, हम किसी को कहते हैं भाई तुम अगर भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ, तो वो कहते फिर तुम्हारे को ये दृष्टि से नहीं देख सकते हो मेरा विराट रूप, तो भाई तुम दिव्य चक्षु दे दो, तुम्हारे को दे सकते हो तो दे दो दिव्य चक्षु तो देख लें, तो कि तुम्हारे पास दिव्य चक्षु नहीं है तुम कैसे देख सकते हो। तो दिव्य चक्षु भौतिक चीजों को, भौतिक भविष्य को देखने के लिए, लेकिन प्रेम के नेत्र, प्रेम अंजन श्रुत भक्ति विलोचन संद सदैव हृदय लोकयंति यम श्याम सुंदर अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंद माधि पुरुषम तमाम बजामे। भगवतों के आंखों में भगवत प्रेम का ऐसा अंजन लगा है कि वो हृदय में सदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो ये दिव्य चक्षु से उन्होंने भौतिक एनामलीज, भौतिक दुर्गुण देखे, और देखे तो उनकी चिकित्सा करने के लिए, उनका हित करने के लिए उन्होंने विचार किया। ददाओ का मतलब ध्यान से उसके भलाई का सोचने लगे। देखो भलाई का सोच तो सब सकते हैं, लेकिन करने का सामर्थ्य है कि नहीं? भाई आप भी यहां कहो कि भाई हमारे को यह भव्य मंदिर बनाना है, लेकिन सामर्थ्य है कि नहीं? तो सामर्थ्य है उसके लिए का अमोघ दृक, ये कर सकता है क्योंकि इसके पास सारी योग्यता है, ये सब ज्ञान से संपन्न है, ये इसी काम के लिए अवतार लिया है और इसका काम अमोघ है, इसके यहां कोई उसमें कोई रिकावट नहीं पड़ेगी। तो ये दो लाइनें तो नीचे की समझ में आ गई, आगे समझ में ये दो लाइनें समझ में आई। अब क्या दोष देखे कलयुग में, एक देह द्वापर में बैठा है व्यासदेव, द्वापर में देख रहा है कलयुग में होने वाले जो दोष है उनको देख रहा है, कलयुग के दोषों को देख रहा है। और दोष क्या देखा, भौतिका नाम च भावानाम। भौतिका नाम का मतलब है भौतिक जगत के पदार्थ, भौतिक जगत में जो कुछ है, जैसे प्रभुपाद के तात्पर्य में है कि धरती जो सत्ययुग में जितना अन्न देती थी उतना कलयुग में नहीं दे रही, गाय जितना सत्ययुग में दूध देती थी उतना अभी नहीं दे रही है, उतना फल वृक्ष में नहीं लग रहा है, उतनी लोग की आयु नहीं है, तो ये है भौतिक का नाम। ऐसे भौतिक कार्य जो है वो भावा नाम का अर्थ लिखा है कार्य, जो भौतिक कार्य संसार में हो रहे हैं जिसके ऊपर हमारी जीवन का निर्भय है, निर्भर है, भाई हमें शुद्ध हवा चाहिए। अब शुद्ध हवा कितनी खराब हो गई, कितनी हवा शहर में खराब है। अब दिल्ली के अंदर के बॉम्बे या कलकत्ते के अंदर चल के दिन में शाम को सफेद कपड़े से मुंह को साफ करो तो कपड़ा सफेद कैसा हो जाता है, काला हो जाता है कि नहीं? तो काला कहाँ से कलास आती है, किसके ऊपर आती है, मुंह के ऊपर आती है, कहाँ से आती है, गाड़ियों के धुएं से आती है। तो इसका मतलब दुनिया में हम अपना मुंह काला कर रहे हैं, खुद अपना ही मुंह हम काला कर रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है ना? ये गांव के लोग नाश करते, नाश लगाते ना, काली नाश, नाश क्या बोलते, तंबाकू होती है ना काली, एक बिल्कुल पाउडर जैसी है ना, देखा है ना, क्या बोलते हैं यहाँ, हाँ बजर, नहीं बजर तो आजकल आई है, ये नाश, एक बहुत बुढ़िया बुढ़िया से दांतों को नाश काली लगाती। तो एक आदमी मुझे क्या कर रहा है, बोला नाश कर रहा हूँ, बोला कौन सी, बोला काली कर रहा हूँ, बोला किसकी कर रहा हूँ, बोला अपनी कर रहा हूँ, अपना नाश कर रहा हूँ, अपना काली कर रहा हूँ, अपना ही काला कर रहा हूँ, वो अपना ही नाश कर रहा हूँ, तो ये नाश कर रहा है। तो ये सब अपना, जैसे हमारे को पानी शुद्ध चाहिए, अब देखो कभी कभी आप 60-70 साल पुराने आदमी से पूछो कि पानी 15 रुपया लीटर है तो वो पागल हो जाएगा, बोला दूध भी 2-8 लीटर होता था, रुपया लीटर था, पानी 15 रुपया लीटर लेते हो, लेकिन हम ले रहे हैं कि नहीं? तो पानी को कितना खराब किया, किसने खराब किया, प्रभाव इतना भारी पड़ गया कि पानी अब शुद्ध पानी, अब नल के नीचे हम पानी पीते थे सीधा, ऐसे नल के नीचे से पीते कि नहीं, कभी बीमार हुए, जूता पहनते नहीं थे गांव में, कभी बीमार हुए न, पानी नलके से पी, नल का तो क्या, बरसात का पानी खड्डे में पड़ा था वो पी लेते थे, कभी बीमार हुए नहीं, बिना जूते के घूमते थे कभी बीमार हुए नहीं, 5 आदमी साथ भोजन करते थे कभी किसी को कोरोना वायरस हुआ नहीं, भाई 5-5 आदमी साथ भोजन करते थे कि नहीं करते थे? अभी भी जब मैं अभी यहाँ आने से पहले राजस्थान में था, किसी घर में तो 4 आदमी साथ बैठ गए, एक ही थाली में खा रहे। तो ये सब कुछ समय ने सब चीजों को बिगाड़ दिया। भौतिका नाम च भावा नाम शक्ति हर्षाम, ये जो भौतिक चीजें जो संसार में हमारी आजीविका के लिए जरूरी है, उन सब की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अबे पहले चावल घर में पकते थे सुगंधा सी, तो पूरे अड़ोस पड़ोस में सुगंध आती थी, चावल में इतनी सुगंध होती थी, आती थी पड़ोस अड़ोस में सुगंध आती थी, और शुद्ध घी का हलवा बनता था तो 5वें माले तक सुगंध आती थी। हमारा वो कजन भाई था, उसको कहा टीवी की एंटीना ठीक करो, नीचे हलवा पक रहा था, वो वापस आ गया, बोला क्यों, बोला इतनी खुशबू आती है काम नहीं होता है, पहले हलवा खाऊंगा फिर ऊपर जाऊंगा। तो ये चीजों में, ये तो हमारे आंखों के सामने देखी हुई चीजें, एक ऊंट रात रात में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला जाता था एक गांव से दूसरे तक। वो पहले जमाने में पोस्ट ऊंट में जाती थी, तो ऊंटों में इतनी शक्ति थी, रात को चढ़ते सुबह पोस्ट पहुंचाते थे और दूसरे दिन वहां से लेके आ जाते थे। अब ऊंट 5 किलोमीटर चलने की उसमें शक्ति नहीं है, अब देखो पहले थी अब नहीं है। और हमारे बड़े बुजुर्ग 20 किलोमीटर रोज सुबह चले जाते थे, काम करके शाम को वापस आते थे। भाई 20 किलोमीटर का था 10 मील, 10 मील का हो गया 5 कोस, तो 5 कोस 3-4 कोस तो खेत, हर एक अपने खेत होते थे, वहाँ जाते थे। हमारे साथ पढ़ने वाले लड़के खेत से रोज आते थे, भाई कम से कम 3 मील मतलब 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर सुबह आते थे पढ़ के और शाम को वापस घर जाते थे। और अभी घर से बाजार तक आधा किलोमीटर भी रिक्शे में जाते कि ऑटो में जाते, तो हमारी शक्ति खत्म हुई कि नहीं? हमारी जितनी योग्यता थी हमारे अंदर आज से 50 साल पहले, वो खत्म होती दिख रही है कि नहीं दिख रही? कितनी हमारे अंदर पहले काम है, माता घर का सब काम करती, अब कोई काम नहीं होता है, तो 5-5 काम वाले की जरूरत है। पहले सब काम कर लेती और पहले 7-7 बच्चों को जन्म देती थी, अब एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी किसी काम की नहीं रही। पहले 7-7 बच्चों को जन्म देने के बाद भी सब काम करती थी, ऐसी माताएं हमने देखी है। पानी घर से 2 मटके भर के आई, पानी रखा और 2 घंटे के बाद बच्चे को जन्म दिया, ऐसे आंखों से देखी हुई सबको, मतलब ये सब हो रहा था ना। तो ये जो पहली लाइन है इसका अर्थ ये, भौतानाम भौतिकानाम च भावानाम शक्ति हर्षाम च तत्कृताम। तत्कृताम का मतलब कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से भौतिक चीजों की जो काम में आती है उनकी शक्ति आस्ते आस्ते ह्रास होने लगेगी, ये व्यास देव ने देखा। बोला उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा? बोला उसका प्रभाव पड़ेगा मानव के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा? अश्रद्धान अश्रद्धाना, लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी, लोगों की श्रद्धा पहले कम हो जाएगी। किसमें श्रद्धा कम हो जाएगी? भगवान में, शास्त्र में, साधु में। श्रद्धा कम होने का प्रमाण क्या है कि इनकी श्रद्धा कम हो गई, ये पता कैसे लगाएगा? ने सत्वाम, सतोगुण में नहीं रहेंगे, वो रजो और तमोगुण में चले जाएंगे। प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे तो देखे, लोग कहते हैं कि ये बड़ा समृद्धिशाली देश है, इस देश के अंदर लोग सुखी हैं, लेकिन ये तो रजो और तमोगुण में है, कहीं सतोगुण में का नाम निशान नहीं है। तो भौतिकता में कहा उधर चकाचौंध भले हो, लेकिन लोगों का स्तर तमोगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। तो श्रद्धा चली गई, इसका पता कैसे लगा? बोला सत्वगुण से लोग नीचे उतर गए। ने सत्वम का मतलब सत्व नहीं है, तो सत्व नहीं है तो रजो और तमो है, तो जब रजो और तमो के आएगा तो क्या होगा? श्रद्धा कम हुई तो सत्वगुण कम हुआ, तो उससे क्या हुआ? बोला उससे हुआ दुर्मेधाम, उनकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि हो गई। वैसे ये कहावत है पुरानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। तो एक हमारे सिंधी भाषा में कहावत है, रब रुसे मत खासे हने कौन हथियार। भगवान जब रूठता है किसी से तो कोई उसको मारता नहीं है, उसकी बुद्धि को हर लेता है। तो दुर्मेधाम का मतलब उनकी बुद्धि हर गारी जाती है। कौन हरता है बुद्धि? और दूसरा क्या कहते हैं इसको कहावत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि हर लेता है, भगवान बुद्धि हर लेता है। ये दुष्टों के लिए भी है ना, चतुर्विधा भजते माम के बाद, दुष्कृतम माया पहर्त ज्ञाना, भगवान की माया उनके ज्ञान को हर लेती है। तो यहां लिखा क्या, दुर्मेधान, मेधा कहते हैं बुद्धि को, दुर् का मतलब जिसकी दुष्ट बुद्धि हो जाएगी, उनकी बुद्धि, बुद्धि का काम है निर्णय करना, बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, सही क्या है गलत क्या है। उनकी बुद्धि क्या है? दुष्ट हो जाएगी, वो गलत को सही मानेंगे और सही को गलत मानेंगे। जो तमो रजोगुण का व्यक्ति है ना, वो गलत को सही कहेगा, सही को गलत कहेगा। अब आज के लोगों की बुद्धि को देखो, कोई अच्छा ऑफिसर यहाँ आ जाए, ईमानदार कमिश्नर आ जाए, तो सारे लोग कहेंगे परेशान हो गए हैं, ये तो न खाता है, न खाने देता है, न काम करने देता है। और कोई बेईमान आए 10,000 रुपये से काम हो जाए, बोला वाह वाह बहुत अच्छा आदमी आए। तो ये बुद्धि दुर्बुद्धि हुई कि नहीं हुई? गलत को सही और सही को गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो दुर्मेधा का मतलब है जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, सत्य को नहीं समझ रही है, झूठ को सच मान रही है और सच को झूठ मान रही है। और इसका परिणाम क्या है, ऐसी बुद्धि वाले लोग सब चीजों में मिलावट करते हैं और इन मिलावट का प्रभाव सबसे ज्यादा शास्त्र के ऊपर होता है। और शास्त्र में ऊपर जब मिलावट होती है तो लोगों को पहले से ही कथा कीर्तन ही मिलावट वाला मिलता है, तो उनको तो कभी सीधी बुद्धि होने का चांस ही नहीं है। देखो संसार के अंदर कोई दूध में मिलावट करे तो भी उसको पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, घी में मिलावट करे, खाने में मिलावट करे तो सजा मिलती है, लेकिन धर्म में मिलावट करे कोई सजा नहीं। बदमाश की कितना धर्म के शास्त्रों में लोगों ने अपना तथा कथित पंथ बना के लाम गीता का है लेकिन काम अपना कर रहे हैं। तो ये सब दुर्बलता दुर्बुद्धि का कारण है कि निर्णय करने का पता नहीं लग रहा है। बुद्धि का काम है निर्णय करना और मन का काम है संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प विचार, ये मन का काम है। तो यहां पहले बुद्धि चली जाएगी और फिर क्या होगा, हर्षित आयु है, उनकी आयु कम हो जाएगी। ये तो पहले अध्याय में भी आया है कि कलयुग के लोगों की आयु कम हो जाएगी। हर्षित आयु, बोला आयु कम क्यों होगी, 100 साल कलयुग की आयु अगर वेद ने लिखी है, 100 साल तक जीने वाले आदमी तो 1% भी नहीं है। तो उस तात्पर्य में जो पहले अध्याय पहले स्कंद के पहले अध्याय में है, प्राय अल्प आयुष दुर्भागा वहां लिखा है, तो वहां प्रभुपद ने लिखा उम्र कम होने का कारण लोगों का खान पान और रहन सहन है। जो खान पान हमारा और रहन सहन है वो हमारी उम्र को समय से पहले भी, अभी हमारे बच्चों को 25-28 साल में सफेद बाल आने लगते हैं। कभी सोचा था 60 साल के बाद सफेद बाल आए तो माना जाए, लेकिन अब 25-28 साल के बच्चों को सफेद बाल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सामने। तो ये हर्ष आयु हो गया कि नहीं हुआ, आयु कम होती जा रही है कि नहीं। एक दृष्टि से देखा जाए तो लोग ज्यादा जी रहे हैं आज, पहले 60-70 तक मर जाते थे, अब ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन फिर भी दवाई दरमल से काम चल रहा है। एक दृष्टि तो ठीक है। प्रभुपद अमेरिका में गए थे, उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे देश से आए हो जहाँ लोग जल्दी मरते हैं, तुम यहाँ हमको क्या सिखाने आए हो। प्रभुपद ने कहा जितने जन्म लेते हैं 100 के 100% मरते हैं, आपका कोई एक बचा हुआ है तो दिखाओ 500 साल से। तो सारी दुनिया में 100% मृत्यु है, लेकिन लोग मृत्यु को बुला रहे हैं, जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करके और सांप को बुलाता है ना। तो लोग जब भाई नशा कर रहे हैं तो मृत्यु नजदीक आएगी कि नहीं आएगी। भाई आदमी जो सिगरेट पिएगा तो कैंसर होगी कि नहीं होगी, शराब पिएगा तो फीफा लिवर खराब हो जिगर खराब होगा कि नहीं होगा, और लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। सरे आम रोड के ऊपर खड़े होकर पी रहे हैं और समझदार लोग पी रहे, पढ़े लिखे विद्वान लोग और बड़े बड़े नेता शराब के बगैर तो उनका घर नहीं चलता है, उनका पार्टी नहीं चलती है। तो इतने बड़े बुद्धिमान लोग, उनकी आयु कैसे नहीं जाएगी, क्योंकि दुर्मेधा है, बुद्धि चली गई, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी आयु का बिना आहार व्यवहार को बिगाड़ कर, रहन सहन को बिगाड़ कर आयु का सत्यानाश कर रहे हैं। बोला और क्या होगा, बोला फिर भी उनका अगर भाग अच्छा हो तो, बोला दुर्भाग, भाग भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कलयुग में किसी का भाग अच्छा है नहीं। प्रभुपाद को भक्तों ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद नहीं, मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया है, तुम भाग्यशाली नहीं थे, हमारे संपर्क में आए, कृष्ण भावना में आए, हमने तुम्हारा भाग्य बनाया है। तो यहां दुर्भागा लिखा है। देखो धन हो तो धनवान होता है, भाग्यवान नहीं होता है। भाग्यवान वो है जिसके पास भगवान है, भगवान है तो भाग्यवान, धन है तो धनवान, और आत्मा का तत्व जानता है तो आत्मवान, पापी है तो अज्ञवान, और विद्या है तो विद्यावान। तो भाग्यवान कौन है, जो इसका मतलब ये लोग भक्ति विमुख होंगे। दुर्भागा का मतलब है उनका भगवान के प्रति झुकाव नहीं होगा, वो भगवान के प्रति उनका, शास्त्र के प्रति, सत्संग के प्रति उनका भाव नहीं रहेगा। दुर्भागा ये तीन तीन ही दोष लिखे हैं, एक श्रद्धा चली जाएगी, सतोगुण चला जाएगा, उसके कारण लोगों की आयु कम होगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, दुष्ट बुद्धि हो जाएंगे और दुर्भाग्य हो जाएंगे। इसलिए मुनि ने उनका हित करने के लिए विचार किया और वो इसमें समर्थ था क्योंकि सर्व ज्ञान संपन्न था, तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, अव्यक्त काल की शक्ति से, हमें पता नहीं लगता है लेकिन काल की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भौतिक चीजों को कैसे आस्ते आस्ते उनकी शक्ति को क्षीण कर दी जा रही है पता नहीं लगता है। भौतिक चीजों की शक्ति कलयुग के प्रभाव से क्षीण होती जाती है। ये कलयुग है जो चौथा युग है सबसे बाद में आने वाला, इसमें भौतिक चीजों का भौतिक चीजों की सारी शक्ति आस्ते आस्ते कम होने लगेगी। ये कलयुग के प्रभाव से, ये समय के काल के प्रभाव से, और क्या होगी, लोगों की आयु कम होगी। पहले आयु कम होगी, दूसरा प्रभुपाद ने लिखा है उनकी स्मृति कम होगी। ये इस श्लोक में नहीं है, कलयुग के प्रभाव का वर्णन भागवत के 12वें स्कंद में है, वहां लिखा है लोगों की स्मृति कम हो जाए, अल्प स्मृति कम होगी, याददाश्त कम होगी, यादगिरी रहेगी नहीं। अब यादगिरी का मैं एक सिंपल उदाहरण दूं, आप सबको इसका अनुभव है, आज से 30 साल पहले हर आदमी को कम से कम 100 नंबर टेलीफोन के याद होते थे, जिनसे काम होता था उनके नंबर याद होते, अब अपने घरवाली का और बेटे का नंबर भी याद नहीं है। सच है कि झूठ है, वो भी देखना पड़ता है कि नहीं है, तो कितनी हमारी यादगिरी कम हुई है, हमारे सामने है कि नहीं। पहले ये पहाड़े होते थे स्कूल के, 20-25 तक बच्चों को 7वीं क्लास तक ये सब पहाड़े याद होते थे, अब आज 13 का पहाड़वा इससे पूछे नहीं आएगा, आएगा 13 का पहाड़ आता है, बोलो 13 एकम 13 दिनों आता है तो ठीक है, लेकिन ये अब क्या है, एकदम निकालो कैलकुलेटर निकालो कंप्यूटर निकालो इसका मतलब, और आज पढ़ाने वालों को भी कुछ याद नहीं है। ये जो आजकल ऑडियो विजुअल सिस्टम आया ना, दिखा के पढ़ाते हैं, इसका मतलब याद कुछ नहीं रहता है, यहाँ दिखाएंगे उसी को बता के काम चला लेते हैं, अपना आता होता तो बोलते ना, अपना आता नहीं है तब उससे देख के काम चला रहे हैं। हम तो इसको कहते हैं कॉपी करके पढ़ाने वाले, कुछ आता नहीं है, वो सब लिखा हुआ अगर सामने कंप्यूटर में सब लिखा रखता है और उधर सब लोगों को दिखा रहे हैं ताकि लोग ये नहीं देखें कि मुझे कुछ नहीं आता है, उसी को देखते रहे, तो ये भी असल में बुद्धि स्मृति कम होने का लक्षण है। स्मृति ज्यादा हो तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको कहने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद को इस उम्र में कितने श्लोक याद थे और धारावाहिक श्लोक बोलते थे, अभी श्लोक लोगों को याद कहां, उनको याद कर नहीं पा रहे, तो स्मृति कम होगी कलयुग के प्रभाव से। और भौतिक चीजें, हमारे को उत्साह नहीं होगा कि ये काम करें, कोई काम करने में उत्साह ही नहीं होगा। क्यों काम करने में उत्साह नहीं होगा, कि उसमें से उतनी रिजल्ट आएगी नहीं, इसलिए लोग रोज धंधा बदल रहे हैं, रोज नौकरी बदल रहे हैं। पहले एक खानदान का जो काम था वो खानदान ही करता था, क्योंकि उसमें कभी कमी होती नहीं थी, काम चल रहा था भाई। 4 महीने खेती करते थे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, 8 महीने कुछ नहीं करते थे, कथा कीर्तन करते थे, घूमने फिरने जाते थे, कोई काम नहीं करते। 4 महीने खेती किया, जरूरत का घर का 12 महीने का अनाज आ गया, बाकी अनाज बाहर बेच कर उसके बदले में बाकी 12 महीने के घर की सामान ले लिया, कपड़े ले लिए, सब ले लिया, और बाकी 4 महीने गर्मियों के घूमने चलते हैं, 4 महीने सर्दी के, जहाँ सर्दी कम है वहाँ चलते हैं घूमते, और नहीं तो कथा करते हैं रोज, कोई काम नहीं। महाप्रभु के जमाने में लोग बरसात के 3-4 महीना महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे, घर छोड़ के सब जगन्नाथपुरी आते थे, लोगों के पास समय था ना। अब आपको कहेंगे 5 दिन हमारे साथ चलो वृंदावन, तो आपके पास समय नहीं, तो ये कह रहे कि पहले लोगों के पास कोई अभी उत्साह ही नहीं है ऐसा, धरती इतना अन्न पैदा नहीं कर रही है, गाय इतना दूध नहीं दे रही है जितना पहले देती थी, और इतना फल सब्जियां उगती नहीं है, उसके अंदर फिर दवाइयां डालते हैं, फिर सुइयां लगाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम अपने बच्चे मरेंगे, भाई खाने वाले कौन है, आने वाली पीढ़ी के बच्चे हमारे ही हम खाएंगे ना, लेकिन इतना उसके अंदर विष डाल देते हैं कि अभी हमने सोचा तक हमारे उस जमाने में खेतों के अंदर कोई खाद की जरूरत ही नहीं थी, एक बार साल में बरसात में ऐसे ही खेत जो निकल जाए आ जाता था, मिल जाता था, अब आस्ते आस्ते सब कुछ कम होने लग गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब कुछ नहीं मिलेगा, न मानव को मिलेगा न पशु को मिलेगा। अब पशु को गाय कचरे के डब्बे के पास खड़ी हुई प्लास्टिक खाती है, आंखों को देखते हो कि नहीं देखते हो, हमारे जमाने में हमारी अपनी उम्र में आप देखो हमने गाय को ऐसे गलियों में कहीं घूमते और खाते नहीं देखा। ग्वाला होता था, शहर की गाय कटी हुई जंगल में ले जाता था, और अंग्रेज सरकार ने गांव के बाहर गौचर जमीन रखी थी जहां गैया चरने जाती थी, 2-3 किलोमीटर जमीन गायों के लिए, 5 किलोमीटर शहर के चारों ओर होती गौशाला, गौचर जमीन थी गाय के चरने के लिए थी, और घर में गाय आती थी तो उसको अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना मिलता था, माता जो जो दूध निकालते थे वो खिलाते थे, अपने हाथ से बना के खिलाते थे, पका के रखते थे, वो पौष्टिक खाना ग्वार खाती थी गाय पहले, बहुत बड़ा शक्तिशाली दूध बढ़ाने वाला। अब ग्वार से बनाते हैं गम, वो जाता है बाहर देश में, अब ग्वार मिलता नहीं है, पर पहले ग्वार ऐसे ही पड़ा होता था, गाय ही खाती थी और किसी काम का नहीं था, गाय बकरी इसके खाने के लिए होता था, अब वो उत्पादन चला गया रबड़ बनाने के काम में, वो में गम बन रहा है और यहाँ खाने के लिए गाय को प्लास्टिक बच गई, और गाय गलियों में कभी घूमती हमने देखी नहीं। एक सान बेल होता था जिसको वो सूरज का दाग लगा देते थे कि ये सबका है, वो घर के बाहर आता था उसको रोटी देगी पानी का छंटा, एक आधा गाय वो भी गांव में कुछ घरों के बाहर आती थी रोटी दिखाने के लिए, पर किसी की गाय गालियों में नहीं घूमती हुई दिखती थी। अब देखो पशुओं के लिए खाने को नहीं है, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं है, बंदर के लिए नहीं है, जंगल में कुछ बचा नहीं है। गांव के बाहर बाहर जाते थे बेर लेके आते थे, जो मुफ्त के बेर थे, और शाम को बेर घर में फल अपने आप आता था, और झाड़ियों के अंदर से केर है कुछ केर लाते थे, वो जो खेजड़ी उसको कहते हैं वो समी का वृक्ष, उससे वो फल लाते थे गाय के घर में खाने के लिए, सब्जियां तो मुफ्त की लाते थे, कोई खर्चा होता नहीं। अब गाय का खर्चा इतना गौशाला में 3,000 रुपया 2,500 रुपया एक गाय का खर्चा है महीने का, 3,000 रुपया वो समझते बड़ी महंगी पड़ती है, और गाय पहले बाहर से खा के आती थी मुफ्त का दूध देती थी, और ज्यादा दूध लेना होता था तो ज्यादा खिला देते थे। तो गाय अभी गाय महंगी पड़ रही है, कोई लोगों को संभालना मुश्किल पड़ रही है, गाय महंगी पड़ रही है, बच्चे महंगे पड़ रहे हैं पढ़ाने में, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, गाय रख नहीं रहे, फिर कर क्या रहे, कमा किसके लिए रहे, वो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गधा मजदूरी कर रहे हो, न तो तुम्हारे पास बच्चे हैं जिनको पालो, न तेरे पास पशु है जिसको पालो, गाड़ी में तेल डालो और धक्के खाओ सुबह से शाम तक, बताओ कोई सुख है क्या इसमें, कैसा जीवन है ये सब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि ये सब खाद्य पदार्थ कम हो गया, इतना महंगा हो गया, जो पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए वो खाने के लिए इतना पैसा है, ऑर्गेनिक चीज मिलती है कहीं, कहते अभी हम इसमें खाद नहीं डालते हैं तो उसका कीमत 6 गुना ज्यादा है, इतना पैसा कहाँ से आए, अब इसलिए लोग वो खा नहीं सकते, अब नहीं खा सकते हैं तो उनकी उम्र कम होने लगेगी, उनकी सब चीजें कम हो जाएंगी तो उम्र कम होने लगी, बीमार हो जाएंगे, और फिर लिखा है क्योंकि लोगों की बुद्धि कम हो गई, उनकी बुद्धि बहुत कम हो गई तो एक दूसरे से व्यवहार करने में इतना धोखेबाजी करते हैं, इतना धोखेदड़ी करते हैं, एक दूसरे को केवल धोखा ही देना आता है, ग्राहक को धोखा दुकानदार दे रहा है, दुकानदार को देखा गो धोखा ग्राहक दे रहा है। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, एक स्टेशन के ऊपर ट्रेन 20 मिनट खड़ी हुई, जब 19 मिनट पूरे हुए तो एक आदमी दौड़ता हुआ नीचे गया और न्यूज़पेपर लेके आया, तो हमने पूछा 20 मिनट गाड़ी खड़ी थी तुम पहले नहीं गया अब क्यों गया, बोला फटा हुआ नोट था, मैंने बोला जल्दी गाड़ी जा रही दे दो, तो मैंने बोला तेरा न्यूज़पेपर ले आओ देखूं कहाँ है, तो न्यूज़पेपर उस दिन 15 तारीख थी, वो 10 तारीख का न्यूज़पेपर था तो ये समझता मैं उसको धोखा दे के आ रहा हूँ, लेकिन उसको तो पुराना न्यूज़पेपर हाथ में बढ़ा दिया। अब 10 तारीख का न्यूज़पेपर किस काम का, रुपये का या 2 रुपये का। तो ये लोग एक दूसरे को धोखे देने के बगैर और कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ तक के दिल खोल के बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है। ऐसी हालात है कि सबको एक दूसरे से भय लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये लिखा है कि एक बहुपद अंग्रेजी में लिखते हैं, म्यूचुअल डीलिंग्स आर फुल ऑफ हाइपोक्रेसी एंड सो ऑन। आपस में व्यवहार धोखेधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, एक दूसरे को धोखा दे रहे। इसलिए व्यास देव ने ये सब कुछ देखा अपनी दिव्य दृष्टि से। और इस जैसे फिर उदाहरण देते, जैसे कोई ज्योतिषी आपको बता दे कि आने वाला ग्रहण इस तारीख को है, तो उसका ग्रहण का पता लगता है। ज्योतिषी बता दे भाई तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, ये संभावना होने की है। इस तरीके से व्यास देव को भविष्य में आने वाले लोग के दुर्भाग्य का पता लगा, क्योंकि उनकी उनकी दृष्टि बहुत आध्यात्मिक थी। प्रभुपाद कहते ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के, उनको भगवान भविष्य में होने क्या होगा इसका दर्शन दिखा देते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 70 साल में, ये आशा लेके के विश्व भर में चेतना महाप्रभु के आंदोलन का स्थापना होगी। और उनको कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपके कितने मंदिर हैं, कितने शिष्य, बोला हजारों शिष्य है, सैकड़ों मंदिर है, एक भी नहीं था। लेकिन उनको दिख रहा था कि ये सब होने वाला है, और 10 साल में ये सब हो गया। तो इसका मतलब यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले हैं उनको भगवान ऐसी दृष्टि देते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो देखते हैं कि इन लोग दुखी हैं, और फिर उनके मन में उनको सुख पहचाने का, उनको भला करने का, सामान्य लोग के भला करने का विचार आता है और वो करते हैं, उनको बड़ा उत्साह होता है। वही असल में सच्चे मित्र हैं संसार के। सच्चा मित्र कौन है समाज का? जो उनका हित करना चाहे, जो उनको बताएंगे भविष्य में ऐसे होने वाला है, तुमको इससे बचना है, इसके लिए ये रास्ता है, इसको अपना लो। तो ये सबसे बड़ा हित है दुनिया का। फिर प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं, ये जो हमारे नेता है, राजनेता बनाए हैं, जिनको 5 मिनट कल क्या होने वाला है उसका तो पता नहीं है, वो क्या हित करेंगे समाज का? वो एक दिन राजा है बना हुआ, 5 मिनट के बाद 4 MP इधर से उधर हो गए तो पता नहीं, तो तख्ता पलट गया। यहाँ तो यहाँ होता है, इनको 5 मिनट के बाद क्या होता है ये पता नहीं होता। और यहाँ इनको तो युग, इसके बाद युग में क्या होता है उसका पता होता है। तो असल में हित वो कर सकते हैं जो आपके भविष्य को जानते हैं, जो भविष्य को नहीं जानते आपका भला क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बेचारे बहुत दुर्भागी हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है आध्यात्मिकता, ये नेता लोग हैं, इनका आध्यात्मिकता के ऊपर विश्वास ही नहीं। और इसलिए कलयुग के अंदर इनसे कोई लाभ किसी को हो ये संभव नहीं है, हमेशा परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। फिर एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं इतनी बीमारी, उस वक्त में टीबी बीमारी इतनी बड़ी हुई थी, मेरे ख्याल में हर 10वें आदमी के ऊपर एक आदमी को टीबी हुआ करती थी, और इतनी टीबी की अस्पताल उस वक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब तब कैंसर का नाम ऐसा आया नहीं था, तब ये एड्स आई नहीं थी, अब तो और बीमारियां आई हैं। तो ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि हमने पहले माता से लोग डरते थे, वो माता चली गई, फिर टीबी आई, हाँ टाइफाइड और माता मौत हुआ करता था पहले, वो खत्म हो गई। पोलियो, फिर पाँव टेढ़ा हुआ उससे डरते थे, वो खत्म हो गया। तो अब फिर दूसरी बीमारी आई, उसका इलाज नहीं है। तो बीमारी ऐसा नहीं है कि चली जाएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग के लोग दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा पीछे हटते हैं, हिचकिचाते हैं, लेते नहीं हैं। लेकिन फिर भी शिला व्यास देव जैसे निस्वार्थी उनका भला करना चाहते हैं कि सबका भला कैसे हो, ऐसे करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा सबका सोशल वेलफेयर वर्क है। सोशल वेलफेयर वर्क, या जिसको कहा जाए कि सबका भला करने का सबसे उत्तम कार्य कौन सा है, लोगों को दुख से बचाना। और फिर प्रभुपाद जी नाम लिखते हैं, यही उद्देश्य व्यासदेव का था, यही उद्देश्य नारद का था, यही मध्वाचार्य, यही चेतना महाप्रभु, यही रूप गोस्वामी, यही सरस्वती ठाकुर का उद्देश्य था। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सब एक ही है, व्यक्ति अलग हो सकता है लेकिन उनका काम एक ही है। क्या काम है? कि जीव आत्मा को भौतिक जगत में भटकने से बचाकर भगवत धाम वापस ले जाना। तो ये सबसे बड़ा उत्तम परमार्थ का कार्य है। दुनिया में लोग कहते हैं परमार्थ का कारण ये है कि भूखे को रोटी खिला लो, नंगे को कपड़ा दे दो, बीमार को दवाई दे दो। प्रभुपाद ये अच्छा है लेकिन महान कार्य ये है कि वो बीमारी नहीं हो, भूखाई नहीं हो, नंगाई न रहे, ऐसी उसको शिक्षा दे दो। प्रभुपाद जी उदाहरण एक बार दे रहे थे कि किसी धनी सेठ का बच्चा हो, बाप से बिछड़ के शहर में कहीं नौकरी कर रहा हो, बीमार हो, भूखा हो, नंगा हो, कोई उसको कपड़ा देता है अच्छा करता है, कोई उसको दवाई कराता है अच्छा करता है, कोई उसको भोजन देता है अच्छा करता है, लेकिन कोई उसके बाप का मित्र उस बच्चे को पहचान ले और कहे कि बेटा तू यहाँ पे नौकरी क्यों कर रहा है, तेरा पिता हजार ऐसे कारखानों का मालिक है, तुम चल तेरे को तेरे पिता के पास ले जाता हूँ, और उसको उसके पिता से मिला दे, तो ये सबसे अच्छा काम है, या उसको रोटी खिला दे ये अच्छा काम है। पिता से मिलाएगा तो सब उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया में जो कार्य होता है, क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर वर्क को, समाज सेवा जो दुनिया में होती है, भूखे की कपड़े रोटी देने वाली, उससे महान सेवा है उनको भगवान जो सबका पिता है उनका परिचय करा के भगवान की सेवा में लगाने से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बच्चा है अपने पिता का हाथ पकड़ के किसी बड़े माल के अंदर चला जाए, हर चीज को देख के कहेगा बड़ी अच्छी है, बाबा खिलौना ले दो, बाबा मिठाई ले दो, बाबा कपड़े ले दो, अच्छा लगेगा सब उसको। अचानक माल में अनाउंसमेंट हो जाए कि बम रखा है और सब भगदड़ मच जाए, बाप से बच्चा अलग हो जाए, तो छोटा बच्चा उसी माल में खिलौने को देखेगा फिर भी रोएगा, मिठाई के पास खड़ा होगा फिर भी रोएगा, कपड़े साफ पड़े पड़ोगे फिर भी रोएगा। तो दुनिया में जो चीज़ें अच्छी लग रही थी वो चीज़ें अच्छी थी कि बाप का हाथ अच्छा था, बाप के हाथ में हाथ था तब सब कुछ अच्छा लग रहा था, जब बाप के हाथ से हाथ छूट गया तो जो चीज़ें अच्छी लग रही थी उधर ही उनको देख के रो रहा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा है बाप का हाथ। तो भगवान के साथ अगर हमारा हाथ मिल जाए तो फिर सारी दुनिया हमको अच्छी लगेगी, और उससे हाथ छूट जाए तो दुनिया के अंदर सब चीज़ें पड़ी हों फिर भी रोते रहेंगे। तो व्यास देव ने लोगों का हित करने का सोचा। तो कैसे हित करेंगे व्यासदेव, ये आप सुनेंगे कैसे उन्होंने आध्यात्मिक शास्त्रों को प्रकाशित किया, सबके सामने सरल बनाया, और जब तक नारद की प्रेरणा से भागवत का प्रकट्य नहीं हुआ तब तक सबके रोग का निदान होना संभव नहीं था। तो असल में भागवत ही सबके दुखों का चिकित्सा है, और भागवत को विस्तार से पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। आप सुबह भागवत को श्रवण के लिए आते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? तो आज के श्लोक में हमने क्या देखा, कलयुग के कारण चीजों सब चीजें कम काम की होती जाएंगी और लोगों की बुद्धि दुर्बुद्धि होते जाएंगे, भाग चला जाएगा, उम्र कम होगी, इसलिए उनका भला करने के लिए व्यास देव ने विचार किया कि इनका हित कैसे करें, और उनका हित है उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए ताकि वो भौतिक रूप से उनका इलाज हो। भौतिक रोग की दवाई है हरि कथा और हरि कीर्तन। तो ये आज का श्लोक। हरे कृष्ण।